तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोए।
तू मेरे पास न थी फिर भी सहर होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छूकर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शोख सितारा टूटे।
लता मंगेशकर के एक दिन में क्या क्या घटता है, यानी कि रूटीन?
ये रूटीन तो ऐसे देखिए, क्लासिकल का मतलब जो रियाज होता है वो आजकल तो मैं करती नहीं हूँ, पर पहले मैं करती थी। तो सुबह उठ के रियाज होता था, उसके बाद हम लोग ज़्यादातर मैं काम पे निकल जाती हूँ, 10-10:30 बजे के बाद रिकॉर्डिंग होती है, दोपहर को वापस आती हूँ, फिर मैं घर पर रहती हूँ। मैं ज़्यादा घर पर रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, और ये शुरू से ही है, मैं ज़्यादा बाहर इधर उधर नहीं जाती हूँ।
पार्टियों में, प्रोग्रामों
में नहीं, मैं नहीं जाती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं होता है। थोड़ा पढ़ने का शौक है तो नॉवेल वगैरह पढ़ती हूँ।
मराठी के पढ़ती हैं, हिंदी के?
मैं हिंदी के भी पढ़ती हूँ।
कौन पसंद है आपको?
शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम बाबू और रविन्द्रनाथ टैगोर, और उर्दू शायर काफ़ी पढ़ती हूँ, और हिंदी के भी, जैसे बच्चन साहब हैं, नरेंद्र शर्मा
जी। पोइट्री से आपको खास लगाव?
जी, जयशंकर प्रसाद।
आपने हजारों फिल्मों के लिए गीत गा दिए हैं लता जी, आप खुद भी फिल्में देखती हैं कि नहीं देखती हैं? कितनी देखती हैं?
मैं देखती हूँ पर बहुत नहीं,
जैसे मैं कहूँ महीने में एक आध देख लेती हैं
आप? आजकल नहीं देखती हूँ मैं ज़्यादा, मुझे वो बहुत मारधाड़ अच्छी नहीं लगती।
अच्छा, पहले जब आप देखती थी तो कौन लोग आपको पसंद आते थे खूब,
मतलब किस
एक्ट्रेस? एक्ट्रेसेस
दिलीप कुमार, मीना कुमारी, देवानंद, नरगिस, सायरा बानू, बाकी डायरेक्टर मुझे अच्छे लगते थे, गुरुदत्त।
यहीं पर मुझे गुरुदत्त तो नहीं, हाँ दिलीप कुमार की एक बात याद आती है जो उन्होंने लंदन में आपके एक शो के दौरान कही थी।
जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह के बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन या कोई घर, गांव या कोई वतन, देश नहीं होता, जिस तरह के उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है।
आपको कुछ ऐसा याद आता है कि किसी हीरोइन के लिए आपकी आवाज़ ना इस्तेमाल हुई हो जब से आप आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में?
नहीं, मैंने सबके लिए गाया।
सबके लिए गाया जी, और आज तक गा रही हैं।
पर मेरी आवाज़ कुछ ऐसे हीरोइन थी जिसके ऊपर कभी सजी नहीं, एक दो, जो मुझे हमेशा महसूस होता
अच्छा।
था कि मेरी आवाज़ इस पर लग रहा है कि लता गा रही है, बाकी लोगों पर लगता था कि नहीं वही गा रही हैं। वहीदा जी थी, जब वो गाती थी तो बहुत ऐसे लगता था कि मैं नहीं गा रही हूँ, वो ही गा रही हूँ। पर जैसे प्रिया राजवंश है, वो गाती थी तो लगता था कि कोई और गा रहा है।
याद है मुझे हंसते जख्म,
हंसते जख्म
मदन मोहन जी का संगीत का
जी।
हंसते जख्म की हकीकत मदन मोहन के माध्यम से। अच्छा, आजकल आपके नए गीत इतने कम क्यों आ रहे हैं?
लोग मैं गा नहीं रही हूँ।
आपने गाना कम कर दिया है?
जी हाँ।
इसकी क्या वजह बताएंगे आप अपने सुनने वालों को?
नहीं, इसकी कोई खास वजह नहीं है। वजह यही है कि मैं अब ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगे मैं करूँ। वैसे अभी मेरी दो फिल्में आई हैं जो बहुत चली हैं, लोगों को अभी इतनी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जैसे चांदनी या मैंने प्यार किया।
मैंने प्यार किया तो बहुत ही हिट हो गई, सुपर हिट हो गई जी।
जी हाँ।
एक गीत की रिकॉर्डिंग का आजकल क्या सिस्टम है? क्योंकि अभी जब आप कह रही थी कि डबिंग होती है, मुलाकात भी नहीं होती,
आजकल डबिंग ही होती है।
यानी क्या होता है बताइए?
डबिंग मतलब म्यूजिक पहले ले लेते हैं, या हो सकता कभी कभी ये भी होता है कि पहले गाना ले लेते हैं किसी से, वो गाना पिक्चराइज भी हो जाता है, फिर हम जाते हैं और गाना गा देते हैं।
ऐसा होता है कभी कि आप अपने गीत सुनकर बोर हो जाएं और आपका मन करे कि आप किसी और को सुनना चाहिए?
मैं अपना गाना सुनती ही नहीं हूँ।
अच्छा, सुनती नहीं तो यही मैं दरअसल यही आपसे पूछना चाह रहा था कि फिर किसको सुनती हैं, कौन लोग पसंद?
मैं सुनती हूँ बड़े गुलाम अली खान साहब और आमिर खान साहब।
पुराने लोगों को सुनती हैं
जी हाँ। क्लासिकल म्यूजिक सुनती हूँ, या रविशंकर जी हैं, या अली अकबर जी हैं, भीमसेन जी हैं।
आपके रियाज की क्या स्थिति है?
नहीं, आजकल तो रियाज नहीं कर रही हूँ, पर आज से 2 साल पहले मैं सीखती थी किसी से। बड़े गुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे तुलसीदास शर्मा, वो आते थे मुझे, मतलब हम लोग बैठ के रियाज करते थे। पर अभी क्या है, कुछ थोड़े दिन हुए मेरा रियाज थोड़ा छूट गया है, पर अब शुरू करूँगी फिर से।
आप तो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, गिफ्टेड, पैदाइशी कलाकार हैं। ये जिसे आपकी आवाज़ रही है, आपको गायकी पे इतनी कमांड हासिल रही है, कि आपने गा दिया, पानी की तरह से आवाज मचल गई और संगीतबद्ध हो गई। आप किस तरह से इसको बयान करेंगी? मतलब लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या करिश्मा है कुदरत का, प्रकृति का क्या बड़ा कारनामा है, कैसे होता है?
मैं खुद भी नहीं समझती। मेरे ख्याल से ये तो भगवान की बड़ी कृपा है।
भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन सवाल ये कि भगवान की सारी कृपा आप ही के घर पे हुई?
फुर्सत से बनाया हम लोगों को।
फुर्सत से बनाया जी। यहाँ पे कुछ लोग कभी कभी ये कहते हैं कि साहब लता जी हैं, आशा जी हैं, इन्होंने कहीं मना प्लाइस कर रखा है, इन्हें मना प्ली है, और दूसरे लोगों को चांस नहीं देते हैं। आप क्या कहेंगी?
चांस नहीं देते, ये कहना बहुत गलत बात है।
दरअसल सच बात क्या है,
आपने मुझे कहा कि आजकल आप कम गाती हैं, लोगों को शिकायत है।
हाँ।
तो मैं यही आपसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं कोई लता आई फिर?
ठीक बात है,
तो इसमें मोनोपोली का तो कोई है ही नहीं, लोग बकवास करते हैं मेरे हिसाब से।
जिस गले पे सारे भारत को नाज है, उस गले को आपने आज तक मीठा किस तरह से बना रखा? बहुत लोग तरह तरह, आपको नहीं पता होगा शायद, आपके बारे में बड़े बड़े किस्से मशहूर हैं।
अच्छा,
कोई कहता है लता जी जो है वो मलेठी खाती हैं, तो फसला जो नए नए सीखने वाले हैं लड़के लड़कियाँ, वो मलेठी खाने लगते हैं। और जब इस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आपसे पूछा कि कुछ मलेठी चाहिए, फसल मैं उस रास को जानना चाहता था, आप नहीं समझे होंगे शायद, मैंने आपसे पूछा था मलेठी खाइएगा, लौंग खाइएगा, छोटी इलायची, और आपने सबको मना कर दिया। मुझे लगा फिर आप मतलब गला कैसे ठीक रखती हैं, कुछ तो आप एहतियात करती होंगी लता जी।
नहीं, मैं कुछ नहीं एहतियात करती हूँ, पर खाने पीने की अगर जहाँ तक आप पूछिए, किसी और वजह से आजकल मैं मिर्च मसाला नहीं खाती हूँ, वरना मैं सब खाती थी, हर चीज़, आचार, तेल, जो जो मतलब लोग मना करते हैं, डॉक्टर्स भी
हमेशा से खाती थी हम।
हाँ, बचपन से।
अरे बाप रे, मैं आपको सच बताऊं, बहुत लोग समझते हैं कि लता जी ने पता नहीं किस तपस्या की का जीवन बिताया है।
मिर्च खाती थी मैं बहुत ज्यादा, अभी मैंने बंद किया है, पर वो गले के लिए नहीं, मुझे कोलाइटिस की तकलीफ है इसलिए, वरना मैं बहुत खाती थी,
वरना सब खाती
सब, और खा के मैं गाती थी, वरना लोग खा के गाते नहीं, मैं पूरा खाना खा के तीन तीन चार चार आइसक्रीम कप खा के मैं जाती थी और गाती थी।
एक गाना गाने में रिकॉर्ड कराने में आपका अपना कितना समय लग जाता है?
ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा।
आधे घंटे में?
जी हाँ।
एक गाना खत्म हो जाता है
जी।
अब बताइए फिर, इसीलिए तो बात कही जाती है कि फिर अब और लता मंगेशकर कहाँ मिलेगी।
आपकी बहन आशा भोंसले ने एक बार बीबीसी को एक भेंट में कहा था,
मेरी बड़ी बहन दीदी मेरे पिताजी के पास सीखती थी, तब मैं बहुत छोटी थी, कोई 7-8 साल की थी, लेकिन सुना करती थी, और लोग कहते कि सीखने से ज़्यादा सुनने से गाना ज़्यादा अच्छा जल्दी आता है। आशा का मुझे मालूम नहीं, लेकिन लता मंगेशकर 1000 साल में एक पैदा होती हैं। मुझे लगता है अगर अच्छा इंसान कोई भी मतलब अच्छा सिंगर आए, तो हर कोई चाहता है कि उसको चांस दे, हर म्यूज़िक डायरेक्टर, क्यों, वो पैसे भी कम लेते हैं, टाइम भी ज़्यादा देते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे जैसे लोगों को लेना क्या कि हम जाके पूछते हैं, भाई क्या है, जल्दी बताओ हमको, हम काम करने आए हैं, काम करके जल्दी से निकल गए, तो हमें ही क्यों बुलाते हैं, क्योंकि कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है यहाँ, ये शो बिजनेस है, यहाँ जो अच्छा आएगा उसको चांस मिलेगा, जो अच्छा आएगा ज़रूर चांस मिलेगा, और मिलेगा भी, क्योंकि हम तो जन्म भर तो गाएंगे नहीं।
आशा भोंसले लता लाखों में एक है।
तुमने मुझे लगातार पिघलाया है, पर ये तो गलना है, तपे धातु का उबलना है। मैंने इसे झुलसते हुए सहा, पर कब कहाँ कहा।